Wandering singers, Bhatakte Gayak. Where the voices of the wind calls, where the voice of the winds calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, where lutes in our hand ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. Our lays are of our cities, whose luster is shed. The laughter and beauty of women long dead, the sword of long battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls, our wandering footsteps we go. No love bids us tarry. No joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. Bhatakte Gayak. जहाँ पवन की पुकार हमारे भटकते चरणों को बुलाती है, गूंजते जंगलों और गूंजती गलियों से होकर हाथों में वीणा लिए निरंतर गाते हुए हम घूमते रहते हैं। सभी मनुष्य हमारे अपने हैं और समस्त संसार ही हमारा घर है। हमारे गीत उन नगरों की महिमा का वर्णन करते हैं जिनकी चमक अब इतिहास बन चुकी है। उन स्त्रियों की हंसी और सौंदर्य का जो बहुत पहले इस संसार से विदा हो चुकी है, प्राचीन युद्ध की तलवारों का और पुराने राजाओं के मुकुटों का और जीवन की सरल सुखद और दुख भरी घटनाओं का हम कौन सी आशा संजोए, कौन से स्वप्न बोए, जहां पवन हमारी भटकती राहों को बुलाती है हम वहीं चल पड़ते हैं। ना कोई प्रेम हमें रोकता है, ना कोई सुख हमें ठहरने को कहता है। पवन की पुकार ही हमारे भाग्य की पुकार है। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट। सरोजिनी नायडू की लिखी यह कविता उन भटकते भारतीय गायकों की है जो एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ कल वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, जो इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते हैं, जो संस्कृति का वर्णन करते हैं, जो कला का वर्णन करते हैं, परंतु वो कहते हैं कौन सी आशाएं हम रखें, व्हाट होप्स वी गैदर, व्हाट ड्रीम्स शैल वी सो, कौन से स्वप्न, कौन सी आशाएं, जहां पवन हमें पुकारता है हम वहीं जाते हैं। कोई प्रेम हमें बांधता नहीं, कोई खुशी हमारा बंधन नहीं। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ अवर फेट। जहां भाग्य ले जाए वहां हम जाते हैं। सभी मनुष्य हमारे अपने हैं, और मैन आर आवर किंड्रेड। द वर्ल्ड इज आवर होम। सारा संसार ही हमारा अपना घर है। हाथों में वीणा लिए निरंतर गाते हुए हम घूमते रहते हैं। गूंजते जंगलों और गूंजती गलियों से होकर हम जा रहे हैं, जहां पवन की पुकार हमारे भटकते चरणों को बुलाती है। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड्स कॉल अवर वॉन्डरिंग फीट। कवित्री एक ऐसे जीवन का वर्णन कर रही है जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है, जहां कोई बंधन नहीं है, और जहां पर हवाएं पुकारती है, गीत गाती है, निश्चिंत होकर हम चलते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, किसी भय के हम कैदी नहीं, किसी अपेक्षा के कारागार में हम नहीं। हम गाते हैं, हम भटकते हैं, किसी गांव में हम रुकते नहीं, रुके तो थोड़े समय के बाद वहां से निकल जाते, क्योंकि हमारा काम है गाना। The voice of the wind is the voice of our fate. Wind, ये हवा, ये पवन, ये अनिल दर्शाता है उस निश्चिंत जीवन की दिशा को। आज की अव्यक्त वाणी भट्टी का आज का 20वां दिन। ये भट्टी ज्ञान चर्चा की भट्टी, क्लास की भट्टी नहीं, किसी लेक्चर की नहीं, चर्चा, चिंतन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मनन। आज की मुरली से 12 प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, मुरली की तारीख 15 दिसंबर 2012। बेफिक्र बादशाह बनने की सबसे सहज विधि क्या है? मेरे को तेरे में बदल देना। मनुष्य की सारी चिंताओं का जन्म एक शब्द से होता है। कौन सा शब्द है? इस एक शब्द से ये चिंताओं का गर्भ है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा निर्णय, मेरा कुछ है क्या? पर श्वास सब उधार है, ये शरीर उधार लिया हुआ है, समय उधार लिया हुआ है, उधार का जीवन, उधार की जिंदगी। व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे वो मैनेजर है इस यूनिवर्स का। अगर मन की शांति चाहिए तो रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। जैसे अस्तित्व की रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, इसलिए चिंता से मुक्त होने की विधि क्या है? कर्तापन से मुक्त हो जाना, कर्म से मुक्त होने जाना, निष्क्रियता नहीं, समर्पण अर्थात आलस्य नहीं, पुरुषार्थ चालू रहे परंतु कर्ता की सीट पर न बैठे। कर्तापन से मुक्त, कर्म रह जाए कर्ता गायब हो जाए, यह है कर्मयोग। तो उत्तर क्या है मेरे को? तेरा, समर्पण। पुरुषार्थ तो करना है परंतु पुरुषार्थ का बोझ नहीं, पुरुषार्थ का टेंशन नहीं। मुरली तो पढ़ना है परंतु पूरी याद रखनी है, इसका टेंशन नहीं। मुरली तो पढ़नी है पर उस पर क्लास कराना है, इसका स्ट्रेस नहीं। और 22 तारीख से लेके तो 31 तक आप सबको यहां पर साकार मुरली रिवाइज करनी है। इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर दो बिना देखे। तो तेरा कर देना अर्थात जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, गैर जिम्मेदार हो जाना नहीं है। इससे मुक्त होना है कर्ता भाव से मुक्त हो। तो यह था सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बेफिक्र बादशाह की मुख्य निशानी क्या है? मस्तक पर आत्मिक लाइट की चमक, भीतर हल्कापन, चेहरे पर हल्कापन, भीतर स्वराज। चेहरा कैसा हो? प्रसन्न, हल्का। तीन है, तीन में से सच कौन बोलता है? होठ, चेहरा या आंखें? चेहरा, होठ या आंखें? होठ बड़े झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है आई एम फाइन। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड। होठ सबसे ज्यादा झूठ बोलते। चेहरा, चेहरा तो थोड़ा सच बोलता है, होठों से तो ज्यादा बोलता है। पर आंखें वो झूठ नहीं बोल सकते। आंखों, चेहरा कितना भी प्रसन्न रखो परंतु आंखें पर्दाफाश फाश कर देती है, बोल बोल देती है। चेहरे पर हल्कापन, चिंता जो है चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। कुछ लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं परंतु चेहरा युवाओं जैसा खिला होता है, और कुछ युवा होते हैं जो बूढ़े होते हैं। चिंता है, भय की आदत उन्हें बूढ़ा कर देती है। परिस्थितियां बड़ी हो सकती है परंतु आत्मिक स्थिति परिस्थितियों से बड़ी है। दूसरा, दूसरा प्रश्न क्या था? मस्तक पर आत्मिक लाइट की चमक, आत्मिक लाइट। बेफिक्र अर्थात ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं है, परंतु वो समस्याएं भीतर सिंहासन ना बना ले, वो समस्याएं भीतर बैठ ना जाए। ये था प्रश्न दूसरा। तीसरा प्रश्न, डबल ताजधारी किसे कहा जाएगा? जो अभी 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 क्या है, राज्य अधिकारी, और भविष्य में होगा विश्व राज्य अधिकारी। तो अभी स्वराज्य अधिकारी अर्थात पांच बातों में राजा, कौन से? शरीर पर नियंत्रण, मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण, और चौथा पांचवा इंद्रियों पर, दसो इंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय। तो स्वराज्य का ताज और दूसरा राज्य भाग का ताज। अगर अभी स्वराज्य नहीं है, अगर चाहो एक घंटा योग करना तो मन डैश ना करे। मनी भाई, कल की मुरली क्या था? डिस्टर्ब ना करे। अगर एक मिनट भी मन को शांत नहीं कर सकते तो फिर भविष्य का राज्य कैसे मिलेगा? साइकिल ही चलाने नहीं आते और एरोप्लेन का लाइसेंस की लाइन में लगे हुए। और पायलट बनना है, पहले साइकिल तो सीख लो कम से कम। तो राज्य अधिकारी का नशा, नशा और अभ्यास, कल की अव्यक्त मुरली, मन को कंट्रोल करो, मन को वश में करो, मन के मालिक बनो, मन को साथी बनाओ, मन को जहां लगाना चाहो लगा सको। तो ये दो क्या है? ताज। अभी ही विकारों पर विजयी बनना है। आज सुबह की साकार मुरली, संसार में रावण को जलाते, रावण के कितने सर है? 10। वो कौन से 10 सर है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, इस उत्तर को छोड़ के। रावण के सिर 5 तत्व, कहां लिखा है ऐसा? 5 तत्वों का और रावण का क्या संबंध? भक्ति मार्ग में रावण के 10 सिर बताए हैं, उसका क्या अर्थ है? सबसे पहला है 10 दिशाएं। 10 दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ वेस्ट, और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये हो गए टोटल 10 दिशाएं। 10 दिशाओं पर जिसका कब्जा था, इसलिए उसके कितने? 10 सिर, पहला कारण। दूसरा, हाँ, दशानन ही क्यों है उसी का चर्चा चालू है। तो पहला कारण 10 दिशाएं, दूसरा कारण 4 वेद और 6 वेदांग, 4 वेद और 6 वेदांग का जो ज्ञानी है, इसलिए उसके 10 सिर। तीसरा कारण एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, अत्यंत बुद्धिमान, सुपर मेमोरी जिसकी है, सब तरफ जिसकी नजर भी है, और सामान्य व्यक्ति के पास एक ही मस्तिष्क होता है, इसके पास 10 मस्तिष्क, मतलब मेमोरी बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। सामान्य व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है और जितना उसे याद रहता है, उससे कई गुना अधिक। एक बार पढ़ लिया और हो गया काम। सामान्य व्यक्ति 10 बार पढ़ता है फिर भी याद नहीं रहता है उसको। ये तीसरा, चौथा कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच। मद, माया, द्वेष, स्वार्थ और पांचवा भय या घृणा, उसका वो प्रतीक है। ये चार कारण है और एज पर ब्रह्मा कुमारीज फिलोसॉफीज पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के। तो रावण के सिर के टोटल कितने कारण हुए? पांच। तो इनको नष्ट करना, इनको समाप्त करना, इनका दहन करना, ये है स्वराज्य अधिकार। अगला, यदि डबल ताज का अनुभव नहीं है तो उसकी पहचान क्या है? फिक्र, तनाव, बोझ, अशांति, चिंता, ये सब रेखाएं, टेंशन, किचड़े का टोकरा। इस टोकरे में क्या क्या है? एक टोकरे का चित्र बनाना है सबको, एक टोकरे का चित्र बनाना है। उसमें लिखेंगे किसने क्या कहा, किसने सम्मान नहीं दिया, भविष्य में क्या होगा, अपनी चिंताओं को लिखे उसमें। ये बदलते क्यों नहीं लोग? और ये अदृश्य टोकरा है पर गर्दन को झुका देता है। ये टोकरा कैसा है? इनविजिबल। तो सभी चित्र निकालेंगे, किसका चित्र बनाएंगे? टोकरा। जिनके पास पेपर पेन नहीं है, मनी भाई उनको पेपर और पेन दे दो, बिना डायरी पेन के नॉट अलाउड। वास्तव में मनुष्य दुख से दुखी नहीं है, दुख की कल्पना से ज्यादा दुखी है। किससे दुखी है? दुख की कल्पना। दुख इतना दुख नहीं देता है जितना दुख की कल्पना दुख देती है। तो एक टोकरा बनाएंगे जिसमें अपने जीवन की क्या लिखेंगे, चिंताएं, फिकर, कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस, फियर्स। और ये जरूरी नहीं है कि वो खराब चीजें हैं, आवश्यक भी है। सबको बनाना है और बना के दिखाना है। फिर सबको दे दो, दे दिया सबको। भर गया अब नीचे एक लाइन लिख दो, बाबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा की जिम्मेदारी। एक और चिंता भी है, एल एस एस बी, डिजिटल बैगिंग। इसको कहते हैं डिजिटल पेगिंग, डिजिटल पेक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। इसके भिखारी कौन से भिखारी? डिजिटल बेगर्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल, एल एस एस बी, एल एस एस बी के भिखारी। हमने अच्छा तो बोला ना, हमने अच्छा तो किया ना, हमारा डांस तो अच्छा था ना। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना तो अपने दोस्तों के साथ, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी प्रेरणा तुम्हारे शेयरिंग पर डिपेंड है, नहीं तो हम प्रेरणा से वंचित हो जाएंगे। सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलना, तुम्हारे सहारे, आपके सहारे हमारा पेट इसकी वजह से भर रहा है, और बेल ताकि हम नया कुछ डालें तो तुमको पता चले। तो ये नए प्रकार के भिखारी है, इन्हें कहा जाता है डिजिटल बेगर्स, LSSB, 21वीं सदी के नए भिखारी, आधुनिक भिखारी, भिखारियों की नई जमात, नई श्रेणी, न्यू स्पीशीज, नई प्रजाति निकली है भिखारियों की, इंटरनेशनल। तो प्रश्न क्या था? डबल ताज सबने निकाला ना, और नीचे क्या लिख दिया? शाबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब किसको दे देना है? उसको। तुम ही सब कुछ करोगे क्या? क्या परमात्मा छुट्टी पर गया है? हैज ही गॉन ऑन लीव? क्या शिव बाबा बुजुर्ग हो गए? वो छुट्टी पे अभी नहीं गया है, अभी है। और एक्टिंग गॉड बनने की आवश्यकता नहीं है, एक्टिंग परमात्मा, एक्टिंग डायरेक्टर, गॉड इज स्टिल देयर। विदेश में क्रांति हुई थी जब महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने लिखा था गॉड इज डेड नाउ। जब विज्ञान का युग चालू होने लगा, जब नए नए आविष्कार आने लगे और लोगों को पता चला कि ये सब अंधश्रद्धाएं हैं, अब तक जो कुछ कर रहे थे उस समय क्रिश्चियनिटी में, दूसरे धर्मों में, तब फ्रेडरिक नीचे ने लिखा था गॉड इज डेड। कितने सारे निबंध, कितने सारे लोगों के समर्थन उसे प्राप्त हुआ था, और साइंस उस समय जन्म ले चुका था। तो साइंस के नए नए आविष्कार, रोज नई नई चीजें आ रही थी, जिससे अब तक की सारी रूढ़िवादी था, सब कुछ जो धर्म के नाम पर किया जा रहा था वो सब कुछ गलत साबित हो रहा था। गॉड इज डेड। परंतु वो नीचे को पता नहीं था कि भगवान भी आएगा, और वो है, और उसे भारत के अध्यात्म के विषय में कुछ भी पता नहीं था। तो यदि डबल ताज का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसकी पहचान माथे पर फिक्र, तनाव, बोझ और अशांति की रेखा है, चिंता की रेखा है। दो ही चीजें बैठ सकती, एक तो ताज बैठेगा या तो टोकरी। मस्तिष्क खाली नहीं रहेगा, अगर वहां ताज नहीं है तो टोकरी है। पांचवा प्रश्न, सारे कल्प में डबल ताजधारी बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? हमें, संगम युग के ब्राह्मण बच्चों को। डबल ताज ये चेतना की कमाई है, कोई बाहरी मुकुट नहीं है। संगम युग, संगम युग के कौन? ब्राह्मण बच्चे। आज सुबह की साकार मुरली भारत की महिमा अपरंपार है, और एक की महिमा अपरंपार है, भगवान की महिमा अपरंपार है। अभी अभी लिखो ऐसी 10 बातें जिनकी महिमा अपरंपार है, मुरली के आधार से, कोई भी, सारे ज्ञान के आधार से। उल्टा पुल्टा कुछ भी मत लिखना, सोच के लिखना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है ऐसी बातें लिखनी है, जो मुरलियों में आया है, या फिर वो हो सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी महिमा अपरंपार है? आज की मुरली में 2 बातें आई है, बाप और भारत। आपको लिखना है 8 बातें और। Okay. जितना ज्यादा सोचेंगे, बिना सोचे लिखना है, ज्यादा सोचेंगे कलम रुक जाएगी। शतपाद, सेंटीपीड, सेंटीपीड पता है ना, शतपाद, उसके 100 पैर होते हैं। सुबह हो गई थी, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था शतपाद, और एक लोमड़ी ने उसको देखा और लोमड़ी को आश्चर्य हुआ, तुम्हारे 100 पैर, हमारे 2 पैर है, हमें तो पता है, एक पैर अभी डाला फिर दूसरा पैर, तुमको कैसा पता चलता है कौन सा पैर पहले डालना है फिर दूसरा डालना है फिर तीसरा फिर चौथा, तुम्हारे तो 100 पैर है। वो सेंटीपीड एकदम रुक गया, गहन चिंतन किया, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पहला कौन सा पैर डालता हूं, दूसरा कौन सा पैर डालता हूं, फिर तीसरा फिर चौथा। उसने कहा अब मैं अभ्यास करता हूं, लोमड़ी से कहा, लोमड़ी आंटी मैं तुमको बताऊंगा। और फिर शतपाद ने कॉन्शियसली एक एक पैर डाला, 1, 2, और थोड़ी देर के बाद धड़ाम से गिरा। कौन सी आदत डाली उसने, काउंटिंग की आदत डाली। और फिर उसने सोचा ये करने की मुझे आवश्यकता नहीं, ये जो हो रहा है सहज है, मेरा चलना 100 पैरों से, गिनने की आवश्यकता नहीं है, मेरा स्वभाव ही है 100 पैरों से चलना, अगर मैं गिनती करने लगूं तो मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्या, अभी भी लिख रहे? तो सबसे पहला है भारत की महिमा अपरंपार, बाप की महिमा अपरंपार, तीसरा ज्ञान की महिमा अपरंपार। किसने लिखा ज्ञान? अगला, अब आप बताओ, स्वर्ग की महिमा अपरंपार, मधुबन की महिमा अपरंपार, आबू की महिमा अपरंपार। वो मधुबन में आ गया अब, नहीं तो एक एक पूरा डिपार्टमेंट गिनते गिनते 200 हो जाएगी। कर्मों सद्गुणों की महिमा अपरंपार, समय में संगम युग आ चुका है, समय, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा की महिमा अपरंपार, जगदम्बा की महिमा अपरंपार, गीता की महिमा अपरंपार, ज्ञान की महिमा अपरंपार, श्रीमत की महिमा अपरंपार, सेवा की महिमा, कौन सी सेवा, निस्वार्थ सेवा की महिमा अपरंपार, दान की महिमा अपरंपार, ड्रामा की महिमा, अभी तक तो आया नहीं है ब्राह्मणों की और देवताओं की, स्वर्ग और देवता है, भोजन और कुदरत की महिमा, कहीं आया है मुरली में, साइंस की महिमा है, अपरंपार उसके साथ अभी तक तो भगवान ने जोड़ा नहीं है, प्रकृति का भी जोड़ा नहीं है, ब्रह्मा, भोजन और क्या क्या, प्राप्तियों की महिमा, मंदिर, कौन सी मंदिर, पवित्रता, यज्ञ, प्रकृति की महिमा, ऐसा आया है, हो सकता है, बट आया नहीं है किसी मुरली में, हाँ हो सकता है, और सच्चाई, वो सद्गुणों में आ गया सारे, यज्ञ बोल दिया, परमात्मा प्रेम, परमात्मा में सब आ गया, परमात्मा प्रेम, परमात्मा आकर्षण, परमात्मा भावना, परमात्मा समर्पण, दैवी परिवार हो गया, सृष्टि, सद्गुण हो गया, ज्ञान हो गया, रावण बाप से भी तीखा है, उस दिन था। तो उत्तर क्या है, संगम युग के ब्राह्मण बच्चे। अगला, ब्रह्मा बाप के जीवन की कौन सी विशेषता हमें फॉलो करनी चाहिए? सब कुछ करते हुए भी बेफिक्र, स्थिर, कदम पर कदम। तो अपना जो पेज है डायरी का, उसको एक पेज फाड़ लो, नया पेज, न्यू पेज, और अपने पैर के नीचे रखना है उसको, और पेन से उसका आकार बनाना है। समझ में आया ना क्या करना है? पेज छोटा है, डायरी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये ऐसा, यस, ये है असली काम। सबको करना है। हो गया, अब उसको निकालो और उस पे लिखो कौन कौन सी बातों में फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर अर्थात फुटस्टेप, कदम पर कदम। हो गया सबका, लिख के भी हो गया। जिम्मेदारी बहुत हो सकती है परंतु जिम्मेदारी बोझ ना हो। चिंता से काम जल्दी नहीं होता है, चिंता तो व्यक्ति को थकाता है। ऐसा क्यों है कि दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं फिर भी एक थकता है, दूसरा नहीं थकता? वाह, ऐसा है ना, एक थक जाता है, एक संकल्प एटीट्यूड। साधना की कसौटी है परीक्षा। हम बाबा से कहते हैं कि हमें शक्तिशाली बनाओ, और जब जीवन में परिस्थितियां पेपर्स आते हैं तो हम कहते हैं तुम क्यों आए? अरे तुमने ही तो बुलाया था। पेपर क्या कहता है? तुमने ही तो बुलाया था, तुमने ही तो कहा था कि मुझे शक्तिशाली बनाओ, तो वही तो बनाने तुमको आया हूं। हाँ, जब सब कुछ अनुकूल है, सारे लोग प्रशंसक है, सब सुख सुविधाएं हैं, सभी सहयोगी है, शांति ही शांति है, तब पुरुषार्थ रहे। इसमें कौन सी महिमा? महिमा कब है? जब परिस्थितियां प्रतिकूल है, जब लोग विरोधक विरोधी है। एवरीथिंग इज रनिंग अगेंस्ट द ग्रेन, और फिर भी स्थिर खड़ा है व्यक्ति। शरीर ऊपर नीचे हो रहा है, फिर भी हो गया। लिख के क्या लिखा? कड़ाई सेवा श्रीमत, त्याग तपस्या, प्यारा प्यारा। इनमें से कोई भी शब्द नहीं लिखना है, कुछ नया शब्द लिखो, कोई नई पॉइंट लिखो। वो पॉइंट लिखो जो किसी को पता नहीं और जो हमें भी पता नहीं, हमें मतलब हम स्वयं। अगर यही सारी पॉइंट्स लिखे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक शब्द बदले ना जाए। वही वही शब्द अगर लिखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ नया बुक हमारा और बोल पापा की, हाँ इस टाइप से कुछ। बेफिक्र होना अर्थात गैर जिम्मेदार होना नहीं, बेफिक्र अर्थात कर्तव्य कर रहे, सक्रिय है, निष्क्रियता नहीं है, समर्पण। अंदर से सब कुछ कर रहे हैं परंतु सब कुछ कर कर फिर उसे सौंप रहे। अगला अगला सातवां प्रश्न, दिन भर अपने मन की कौन सी चेकिंग करनी चाहिए? मुरली में वही वही बातें रिपीट हुई है, स्थूल सूक्ष्म फिक्र है, कोई चिंता है, कोई भय है, कोई मेरा का बोझ तो नहीं है। वास्तव में चिंता जो है वो शोर मचा कर नहीं आती, और अध्यात्म में चिंता की भाषा अलग होती है। वो कहते मेरी सेवा है, सोचना पड़ेगा, मुझे निमित्त, मुझे परवाह, परिवार की परवाह है, मुझे सबका कल्याण करना है, मुझे अमृत वेला बहुत शक्तिशाली बनाना है, मुरली का चिंतन करना है, ये करना है, वो करना है, विश्व का कल्याण करना है, ये चिंता इस भाषा में आती है। और चेकिंग अर्थात खुद को दोषी ठहराना नहीं है कि तुम पापी हो, तुमने गलत कर दिया, स्वयं को साक्षी होकर देखना है। चेकिंग क्या है? स्वयं को देखना है। अगर कोई दोष पाया तो आत्मग्लानी में नहीं जाना है, स्वयं को दोषी नहीं ठहराना है, पश्चाताप में नहीं सीधा चालू कर देना, अरे मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उससे तो निकल ही नहीं पाएंगे। फिर रमन महर्षि ने कभी एक कहानी सुनाई थी, शायद काल्पनिक होगी, तमिल में कवि कभी हुए हैं, नक्कीरर उनका नाम था, नक्कीरर। वो ध्यान मग्न थे, तपस्या कर रहे थे, और अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा झाड़ का एक पत्ता टूटा है, एक नदी है, आधा नदी में गिरा, आधा जमीन पर। वो देखते रहे आश्चर्य से निसर्ग की इस अद्भुत घटना को, जो नदी पर पत्ता गिरा आधा भाग, उसका एक हिस्सा पक्षी बन गया, मछली बन गया, और जो धरती पर गिरा उसका एक हिस्सा पक्षी। उन्हें आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया? और फिर उन्होंने देखा दोनों की लड़ाई हो रही है, पक्षी ऊपर उड़ रहा है, मछली नीचे खींच रही है उस पत्ते को। वो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और उसी क्षण वहां से अदृश्य हो गए, ये नहीं वो देखने वाला, और एक गुफा में जाके कैद हो गए, जहां पे 999 कैदी थे। शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, ये क्या है, ये कैसी अद्भुत कहानी है? उन्होंने कहा, ये योग भ्रष्ट होने की कहानी है। क्या होने की कहानी है? योग भ्रष्ट। अपना ध्यान कर रहा था, तुम्हें क्या पड़ी है ये सब देखने की, किधर क्या हो रहा है, कौन क्या बन रहा है, कौन क्या हो रहा है? कहानी काल्पनिक होगी, ऐसा होता नहीं है, पर वो देखते रहे ये क्या हो रहा है, अपना ध्यान करना चाहिए ना चुपचाप। तो कहा जाता है नक्कीरर तमिल महान कवि है, फिर वो गुफा में कैद हो गए, जिसमें ऑलरेडी ऐसे ही योग भ्रष्ट थे दूसरे, हो सकता है कोई मोबाइल की वजह से कैद हुआ है, कोई यूट्यूब की वजह से, कोई शॉर्ट्स और रील देखते देखते कैद हुआ है। ऐसे सारे कैदी थे, और फिर उन्होंने एक काव्य वहां लिखा, एक महान काव्य नक्कीरर, और उस तमिल में वो काव्य लिखा मुरुगन, जिनको भगवान माना जाता है, कार्तिकेय, उनकी महिमा। और फिर उसको लिखने के बाद वो खुद भी मुक्त हो गए, और वो 999 जो कैदी थे उनको भी मुक्त कराए। उसका नाम भी है तीरुमुरुकाट्टुपड्डे, ये काव्य का नाम है, समझ में आ गया ना? तीरुमुरुकाट्टुपड्डे, तिरुमुरुकाट्टु कारुपट्टे, ऐसे ऐसे टोन में बोलना होता है तमिल वाले। तो इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान मुरुगन की महिमा है, और वो लिखने के बाद उनकी खुद की भी मुक्ति हो गई और बाकी सबकी भी मुक्ति कराई। तो मुक्ति का कारण क्या बना? लिखना। इसलिए लिखना छोड़ना नहीं। तो आशीष भाई कल मुरली के बारे में 8 बातें बताई थी करने की, वो कौन सी है बताओ? कोई दूसरा नहीं बताएगा, उनको बुरा लगेगा, वो सोचेंगे मुझे पता है और सब लोग क्यों बता रहे। एक मिनट, कल भी रात में क्लास में बताए, मुख से बोलना, कान से सुनना, से पढ़ना, हाथ से लिखना, तो ये 4 हो गए, और 4 है। उसके ऊपर मनन करना, चर्चा करना, समझना, लास्ट धारण करना, अमल में लाना, प्रैक्टिकल में लाना, फुल मार्क्स। तो मुरली के साथ ये 8 बातें रोज होनी चाहिए, ज्ञान के साथ ये 8 बातें होनी चाहिए। हमारी आंखें पढ़े, हमारे कान सुने, हमारा मुख बोले और हाथ लिखे, मनन करना, चर्चा करना, उसकी मुरली की कोई एक पॉइंट ले लो और उस पर चर्चा करो, ये क्या है। आज की मुरली में है, बाप है वर्ल्ड ऑथोरिटी, मैं सब कुछ जानता हूं, शास्त्र ग्रंथ वेद, शास्त्र वेद और ग्रंथ मैं सबको जानता हूं, वर्ल्ड ऑथोरिटी। सभी शास्त्रों का सार सुनाने में आया हूं, जो सुना रहा है वो साक्षी है, इस चक्र से बाहर है वो, इसलिए उस चक्र का उसे संपूर्ण ज्ञान है, और केवल एक काल का नहीं, त्रिकाल का ज्ञान है। कैसे कैसे धर्म बने, क्या धर्मों का हुआ, कैसे विभाजन हुए, सब कुछ वो चश्मदीद गवाह है, सब उसे पता है। कैसे ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड जो है पूरे सृष्टि चक्र का, वो है त्रेता का अंत और द्वापर की शुरुआत, ये कैसे हुआ, यहां से क्या क्या हिस्ट्री, हाउ द हिस्ट्री अनफोल्डेड, ये उसे पता है। भक्ति की शुरुआत कहां से हुई है, इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई कृष्ण भक्ति, और ये सब तो बहुत बाद में आया। मंदिर बनने कब से चालू हुए, भक्ति कब से चालू हुई, भक्ति साउथ से चालू हुई या नॉर्थ से चालू हुई, भारत में साउथ से भक्ति की शुरुआत हुई, सोमनाथ बहुत बाद में आया, उसके वो तो विक्रमादित्य से पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका है, उसी काल में शिवलिंग की पूजा दिखाई है। राधे कृष्ण ये तो बहुत बहुत बाद में आए, इनके मंदिर तो बहुत बाद में बने। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को जानना आवश्यक है, उसे संपूर्ण हिस्ट्री पता है, कैसे धर्मों की स्थापना हुई इधर भारत में और भारत से बाहर। आज विश्व में 4,300 धर्म है, 4,300 रिलीजन्स लगभग, ये कैसे हुआ सब कुछ, एक धर्म और उस धर्म में कैसे विभाजन हुआ, हर धर्म में बंटवारा कैसे हुआ, डिविजन्स सब डिविजन्स, डिविजन्स सब डिविजन्स, ये सब कुछ उसे पता है। भाषा पहले क्या थी और वो भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ वो उसे पता है। उसे ज्योग्राफी पता है, कितने खंड है टोटल, टोटल कितने खंड है, कॉन्टिनेंट्स 5 या 7। एक और था जिसका वर्णन इतिहास में, लुमेरिया, जो अभी लुप्त हो गया है, लुमेरिया का कहीं वर्णन ही नहीं है, तो वो सब कुछ जानता है। तो इस पर चिंतन करना है, वर्ल्ड ऑथोरिटी हूं मैं, ज्ञान का सागर हूं, आई नो एवरीथिंग, उसे सब पता है। ये नहीं सोचो कि हमारे जीवन के बारे में उसे पता नहीं, उसे पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, शायद भूल तो नहीं गया। अगला प्रश्न, शरीर के हिसाब किताब के समय कैसी स्थिति रखनी चाहिए, अचानक बीमारी, अचानक डिटेक्ट हो गया कैंसर है, अचानक डिटेक्ट हुआ एक गांठ है, अब पता चला, अब उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, उस पीरियड में बड़ा चिंता में व्यक्ति रहता है, खाना पीना सब भूल जाता है, पता चलता है कि ये है कुछ तो है, आधे तो डॉक्टर को दिखाने से पहले ही आधे इन्वेस्टिगेशन खुद ही थोड़ा पढ़ लेता है, ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, कुछ तो है, मुझे लग ही रहा था मुझे कुछ है। शरीर अपना हिसाब किताब चुकतु करे, लेकिन मन आत्मिक स्वमान और बेफिक्र बादशाही में स्थिर रहे। इसका अर्थ ये नहीं चिकित्सा नहीं लेना, परंतु उपराम रहना, साक्षी रहना। शरीर की भी एक यात्रा है, शरीर की यात्रा को भी देखना। बीमारी की भी यात्रा है, ए से चालू होती है बी तक। बीच में हमने देखा था, एक बहन जी थे जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और जिनका कीमोथेरेपी चला था एक साल तक। वो अकेले ही थे, उनको कोई ना सेवाधारी मिला ना कोई माता मिली, अकेली ही वो बहन। और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20 और 30 के बीच। वो अकेली आती थी, पहले फार्मेसी में जाओ, वो सारे कीमो के ड्रग्स मंगाओ, फिर कीमो के दिन आओ, खुद ही एडमिट हो, और फिर सारा कीमो, शाम को वापस जाना, फिर दूसरे दिन वापस आना, फिर वापस ब्लड टेस्ट करना, फिर वापस जाना, ये एक कीमो। उसके बीच में अगर कुछ 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 उल्टिया और कुछ कुछ हुआ उसके लिए फिर आना। हमने देखा उसके साथ कभी कोई था ही नहीं, पर एक चीज नोट की, वो खुश थी हमेशा। कभी एक बार भी नहीं कहा, कभी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी उसके मुख से कि मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, कोई तो चाहिए, कोई सेवाधारी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। अकेली पूरा एक साल तक कीमो लेती रही और ठीक भी हो गई, सारे बाल चले गए, अभी भी आके मिलते हैं, हो गया। और उसका कोई, उसकी कोई चर्चा भी नहीं करती, नहीं तो लोगों को बहुत चाहिए, सेवाधारी चाहिए, बैठने वाला चाहिए, कोई लेके जाने वाला चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो कोई वापस लेके जाने वाला चाहिए। आधार 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 चाहिए। ये साधना है निराधार की, किसी साकार मुरली में आया था, पूरे लाइन मुझे याद नहीं है, सर्च में डालो तो आएगा। ये साधना है निराधार की, कोई नहीं चाहिए, हम अकेले। जब कोई नहीं रहेगा ना तो उसकी याद और तीव्र होगी। इतनी बड़ा, इतना बड़ा पेपर, और कोई लोग तो उसको सुनकर ही बेहोश हो जाते। अच्छा मैं गया, तीन यात्री आए, एक होटल में रुके, रात को भोजन किया, उसमें से पहले को अर्ली मॉर्निंग निकल जाना था, वो निकल गया सुबह 6 बजे, बाकी दो यात्री रह गए। उस दिन रात में जो भोजन था उसमें एक मरा हुआ सांप गिर गया था, और उसके बाद वो जो दो यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई, गलती कुछ हो गई होगी। और ये यात्री तो सुबह सुबह निकल गया था, एक साल के बाद लौटा उसी होटल में, एक साल के बाद जिंदा था, एक साल के बाद लौटा, और होटल के मालिक ने देखा, अरे आप हैं, आप तो वही हो ना जो तीन लोग आए थे। उसने कहा हाँ हाँ मैं वही हूं। तो आपने भी तो खाना खाया था। हाँ मैंने तो खाया था। फिर उसने बताया वो जो दो लोग थे वो भोजन विषाक्त था और दो लोगों की मृत्यु हो गई थी सांप की वजह से। उसने कहा क्या, और वो मर गया। कब? एक साल के बाद। तो ये कैसे हो गया? निश्चित ही सांप का विष से तो नहीं मरा। व्यक्ति किससे मरता है? शौक से, कल्पना से। अब मेरा क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी आ गई मुझे। तीन बातें हैं, एक तो रेगुलर चेकअप होता रहे साल में एक बार, दूसरा बीमारी आए ही ना उसके लिए प्रिवेंशन मेजर्स लेते रहे कि हमें बीमारी ही ना आए, उसके लिए अपने भोजन, खान पान, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सब पे का ध्यान। और तीसरा अगर बीमारी आ गई तो फिर क्या करना, आ ही गई अब क्या करें, दुखी होते रहे, सबको सुनाते रहे मैं तो बहुत अच्छा था, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ये, बाकी लोग इतना सब कुछ खाते हैं सुबह से रात तक, उनको कभी कुछ नहीं होता है, हम एक क्या, एक गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया तो वजन बढ़ जाता है, एक थोड़ा सा करते तो ऐसा हो जाता है। तो जब बीमारी आए प्रश्न क्या है, शरीर के हिसाब किताब के समय कैसी स्थिति रखनी है, चल डोल। शरीर का भी हिसाब है, ए से जेड तक की यात्रा है, उसको साक्षी होकर देखना है। अब ये ए से बीमारी आई, जेड तक चलेगा, खत्म होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये माइंडसेट। नहीं तो लोगों को सर्दी खांसी क्या हो जाती है, ऐसे लगती है बचाओ मैं अब मरने वाला हूं इतना दर्द मेरा कुछ करो। साक्षी भाव, ये शरीर परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं आत्मा हूं। पाठ कौन सा है? वही, मैं आत्मा हूं। बाप इसी एक कार्य के लिए आए हैं, मुरली में है आज के, आत्मा का पाठ पढ़ाने बाप आए हैं। नौवां प्रश्न, अमृत वेले कौन सा सामान स्मृति में रखना है? मैं डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। अगला, पेपर आने पर कैसी दृष्टि रखनी है? डरना नहीं है उससे, अनुभवी बनाने आया है। राजयोग दृष्टि विज्ञान है। राजयोग क्या है? दृष्टि विज्ञान। अपने दृष्टि पर हो ही काम करना है। और अनुभवी और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक है। निराकार, अच्छा निराधार आया है मुरली में, आया है निराधार, निराधार की साधना या पुरुषार्थ ऐसा आया है। तो पेपर आते हैं तो पेपर को दुश्मन नहीं समझना, पेपर एक्सरे है। पेपर क्या है? एक्सरे। दिखाने आया है तुम कहां हो खड़े। पेपर आता है कहता है, पेपर आता है तो हम कहते तुम क्यों आए, वो कहता है तुमने बुलाया था इसलिए है। दर्पण है। पुरुषोत्तम भाई ने एक दिन एक्सरे दिखाया था ना वो भी अच्छी साधना थी। ग्यारहवा प्रश्न, बाप दादा बच्चों को कौन सा विशेष वरदान स्मृति में रखने को कहते हैं? डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह। वरदान कोई मत, ये जादू नहीं है वो, उस पर वरदान चेतना की दिशा है, उसको दिशा मिल जाती है। अगर सुबह सुबह हमने कुछ पढ़ लिया तो वो याद रह जाता है फिर, और जीवन बन जाता है, वो द्वार को खोल देता है वरदान। इस मुरली का मुख्य संदेश क्या है? लास्ट प्रश्न, सबसे पहले बताया फिकर से, फिकर दे दो, फकूर ले लो, मेरे को तेरे में बदल दो, ब्रह्मा भाव समान बनो, डबल लाइट बनो, बोझ कम होगा। तो ये थी आज की मुरली। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या सुना आज। सबसे पहला होठ, चेहरा और आंखें। तो आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती, चेहरा भी धोखा दे सकता है, होठ, होठ पर तो विश्वास ही छोड़ दो, बोलते कुछ है और करते कुछ है, लोग बोलते कुछ है और करते कुछ। तो बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, वंदे अंगे झाड़ी ना अंगन अंगन त्याचे दायित्व करी ना। कवि लिखता है संत कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो बोलता है वही करता है, मैं अपने शरीर का झाड़ू बना के उसका आंगन झाड़ूंगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले। तो पहला ये, दूसरा पॉइंट रावण की बातें हमने बताई, रावण के 10 मुख्य 5 रहस्य। कौन कौन से रहस्य दिशा बहन? पहले 10 दिशाएं, दूसरा 4 वेद और 6 वेदांग, तीसरा एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, और चौथा वो सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अहंकार के बाद में फिर मद माया द्वेष भय या घृणा स्वार्थ। ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बहुत हो सकते हैं। और फिर वो 5 विकार स्त्री और 5 विकार। फिर क्या बताया? एक और होमवर्क दिया, एक टोकरी का चित्र और नीचे लिखना है ये सारी चिंता। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक सारी चिंताओं को लिखो, एक एनवलप में डालो, एनवलप को क्लोज करो, और बाबा की जिम्मेदारी, बाबा को समर्पण, पोस्ट ऑफिस में भी उधर पोस्ट कर दो, परमात्मा डाकघर में। परमात्मा डाकघर में, तो ये एक देखा। उसके बाद में क्या देखा, महिमा अपरंपार, तो किस किस की महिमा अपरंपार। उसके बाद में मॉडर्न भिखारियों की, कौन से थे मॉडर्न भिखारी, डिजिटल भिखारी, LSSB लाइक करो। मैंने इतना अच्छा बोला, तुमने लाइक ही नहीं किया, इतना अच्छा मेरा फोटो, तुमने लाइक क्यों नहीं भेजा, ऐसा तो कम से कम भेजना था। तब से नाराज है, दो दिन से कब से भेज के रखा है, अभी तक लाइक वाला कुछ भी नहीं आया। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ये है डिजिटल भिखारी। और क्या देखा हमने, रमन महर्षि की वो कहानी, तुमको क्या करना है, शांति से बैठो, योग करो। इसने क्या किया, उसने कहा ये पक्षी बन गया, ये मछली बन गई, सीधा चले जाओ के गुफा में बंद। नक्कीरर, तमिल कवि नक्कीरर, और किताब का नाम क्या था, हम ही भूल गए। जब भी कोई शब्द दूसरी भाषा का होता है और हम उस पर काम नहीं करते तो वो याद नहीं रहता। तीरुमु तीरुमु तीरु, यहां तक ठीक है, ओके ओके। मुरु, यहां तक ठीक है, तीरु मुरु। काटू काटू पट्टे पट्टे, तीरु मुरु काटू पट्टे। ब्रेक द कट द केक वाली टेक्निक यूज करनी है, ये टेक्निक हमने देखी थी ना। कट द केक अर्थात बड़ा शब्द हो तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, कोई भी बड़ा शब्द हो तो उसको टुकड़े टुकड़े कर देना ताकि वो याद रहे। और क्या देखा, तो अपने काम से काम रखना है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये बहन यहां क्या कर रही है इतने दिनों से, ये भाई अभी तक घर क्यों नहीं गया, ये पहले उस डिपार्टमेंट में था अब उस डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं देता, क्या हुआ, गुप्तचरों को भेजो, खबर लाओ पूरी, लेटेस्ट अपडेट। ये सब क्या है, योग भ्रष्ट के लक्षण। अगला क्या, फुटप्रिंट्स, अपना या जिन्होंने अभी नहीं बनाया वो घर पे जाके बनाओ और उस पर लिखना है। उसके बाद में तीन यात्री, अच्छा वो सांप वाला, ठीक है। और क्या देखा, शरीर का हिसाब आता है तो साक्षी, वो बहन की एक सत्य वृत्तांत। मुरली के साथ आठ पते किसने बताई थी। जो हमारे मुख से निकलता है ना वो हमें हमेशा याद रहता है। हाँ, एक ये भी है, हाँ मतलब हमको याद है जब वो दादी मनोरिंद्रा मुरली चलाती थी, सुशील भाई हम ऐसे सामने बैठते थे, एकदम ऐसे होके बैठना था, दादी अचानक पूछ देती है तुम बताओ। तो वो जो पूछा और हमने अगर नहीं बताया तो फिर वो याद रहता है, जाके फिर ढूंढते उसको, अच्छा ये था। अगला और कोई पॉइंट, निराकार निराधार, ये निराधार की साधना है, इसको कहीं तो आया है, इसको ढूंढना है। हाँ अभ्यास अभ्यास, निराभार का अभ्यास। 14 74 ये अभ्यास निराधार, अभ्यास निराधार का होना चाहिए, आया है। और अपरंपार, महिमा अपरंपार क्या क्या है उसकी एक लिस्ट, रोज की साकार मुरली से ऐसे एक एक शब्द ले लेना है, उसका चिंतन करना है। और ये नहीं समझना हमने चिंतन तो किया पर किसी को बताया नहीं, अगर आज चिंतन किया है तो कभी ना कभी वो काम आएगा, जिस दिन के लिए तैयारी की उस दिन वो काम नहीं आएगा, आगे जाके काम आएगा। इसलिए ये नहीं समझा हमने तो इतनी तैयारी की थी, आपने क्लास के लिए बोला तो, और हमारा तो क्लास हुआ ही नहीं, ऐसे बोलते हैं लोग, हमने ये मुरली पढ़ी थी और फिर बाद में आपने दूसरी मुरली दे दी तो नुकसान हो गया ना। इसकी मुरली, इस मुरली की तैयारी की थी पर टाइम पे दूसरी दे दी, अभी ये भी चालू करेंगे, मुरली एक देंगे और ठीक है, हो गए सारे पॉइंट्स। हाँ, मैं शब्द से सारी चिंता है, मैं मेरा से चिंता हो। जीवन की परीक्षाएं क्या है? एक्सरे है। और अमृत वेले क्या? समान वरदान अभ्यास। और मैं आत्मा का अभ्यास। और ये दृष्टि, हाँ दृष्टि विज्ञान है। राजयोग क्या है? एक दृष्टि विज्ञान। और पेपर दर्पण। तो ये थी आज की मुरली। दीपा बहन जी हमारे बीच में है, गीत गाएंगे। संबलपुर सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं और बहुत गायक है। और यहाँ हमारी बहुत सी जो भट्टियाँ हुई है उसके जो अभिनव क्रांति से लेके जो थीम सॉन्ग्स जो हैं जो दीदी जी ने गाए हैं, तो आज मधुबन आए हैं तो कुछ अच्छा सा गीत गाएंगे, उड़िया गीत।
ओम शांति।
दो लाइन और बाकी हिंदी में गा लो मेन गीत। तो
बाबा का ही गीत है, उड़िया का दो लाइन सुना देती हूँ, समझ में आ जाएगा। बाबा हे बाबा तुम्हें केड़े सुंदर, बाबा हे बाबा तुम्हें केड़े सुंदर, बाबा हे बाबा तुम्हें केड़े सुंदर, तुम्हें केड़े आपणार, बाबा हे बाबा तुम्हें केड़े सुंदर, बाबा हे बाबा तुम्हें केड़े आपणार। समझ में आ गया होगा, बाबा बहुत सुंदर है और
केड़े केड़े सुंदर।
हाँ, कितने सुंदर हो और आपणारो माना अपने हो। हाँ जी,
पूरा समझ में आ गया।
तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, अगर मुझको ना तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, तेरी उल्फत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरी हर श्वास बरदाता फकत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुझसे मेरा क्या था क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी, तुझे दाता समझ पाओ ये शक्ति है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जगत जीवन उसाया है तू ही मेरी इनायत का, मुझे तो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का, बिना तेरे इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, मन की आंखें खोल कर मनन, चेतना के द्वार खोल कर गमन। चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, स्वस्वरूप का चिंतन कर, स्वमान का चिंतन कर, स्वयं का अभिनंदन, स्वगुणों का चिंतन कर, स्वयं में संवर्धन, स्वशक्तियों का चिंतन कर, जीवन में धारण, स्वधर्म का चिंतन कर, पल पल स्मरण, स्वलक्ष्य का चिंतन कर, स्वयं को समर्पण। चिंतन 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 कर चिंतन, स्वपरिवर्तन का चिंतन, तोड़ पुरानी बंधन, स्वाधिकार का चिंतन, देख स्वयं का प्रशासन, स्वप्राप्ति का चिंतन कर, उनका रक्षण, स्वज्ञान का चिंतन, बना अपना योगी जीवन। चिंतन 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 कर चिंतन, सफल
शिव बाबा का स्मरण, स्मरण कर शिव बाबा का स्मरण।